श्री श्री राधिका रमन गोप गोपी नाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, देव धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, और प्रेमानंदे ऑल ओवर ईस्ट से मंडे बोटी ऑल ओवर ईस्ट से मंडे बोटी ऑल ओवर ईस्ट से मंडे बोटी ऑल ओवर ईस्ट टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा ऑल ओवर ईस्ट टू श्री प्रभुपादा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयम् उदीरये शन्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः तदीयन्तस्त हि अभद्राणि विध्नोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 10 फिर पीछे दोहराइए। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारख्ये यत न उपकुर्यात् अस्वर्थे मृत्यु स्वज्ञाति विग्रहे। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारख्ये क्षणभङ्गुरहे यन्नोम कुर्याद स्वर्थ यत न उपकुर्याद अस्वर्थे मृत्य स्वज्ञात विग्रहे। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारख्ये क्षणभङ्गुरे यत् न उपकुर्यात् अस्वार्थ मृत स्वज्ञाति विग्रहे। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारख्ये क्षणभङ्गुरे यत् न उपकुर्यात् अस्वार्थ मृत्य स्वज्ञाति विग्रहे। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारख्ये क्षणभङ्गुरे यत् न उपकुर्यात् अस्वार्थे मृत्य स्वज्ञाति विग्रहे।
Oh, yeah.
अहो ओह दैन्यम दीन स्थिति अहो ओह कष्टम कोरे कष्ट पारक्य है जो मृत्यु के बाद कुत्ते तथा गीदड़ों के द्वारा भक्ष है क्षण भंगुर है किसी भी क्षण नष्ट होने वाला यत क्योंकि ना नहीं उपकुर्यात काम आवेगा अस्वार्थे अपने हित के लिए नहीं मृत्यु जीवात्मा जिसकी मृत्यु ध्रुव है स्व अपनी संपत्ति ज्ञाति परिजनों तथा मित्रों विग्रह तथा अपना शरीर से। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ साल तक काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा धन परोपकार में लगने चाहिए अन्यथा वे सब दुख एवं दैन्य के कारण बनेंगे। इसका तात्पर्य पढ़ता हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 35वें श्लोक में अन्यत्र ऐसा ही उपदेश दिया गया है। एताव जन्म साफल्यम देहिनामि हि देहिषु प्रारेत धीरिया वाचा से आचरणम सदा। प्रत्येक जीव का धर्म है कि अपने जीवन धन बुद्धि तथा वाणी से अन्यों के हित के लिए शुभ कार्य करे। यही जीवन का संदेश है। अपना शरीर तथा अपने मित्रों एवं परिजनों के शरीर तथा अपनी संपत्ति एवं जो कुछ भी हो सारा परोपकार में लगा देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का यही संदेश है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 9वें अध्याय के 41वें प्यार में कहा गया है, भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने इस भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म धारण किया है उसे चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाए और अन्यों के हित के लिए कार्य करे। उपकुर्यात शब्द का अर्थ है पर उपकार अर्थात दूसरों की सहायता। निसंदेह मानव समाज में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो दूसरों की सहायता करती हैं, किंतु परोपकारी समाज सेवी ये नहीं जानते कि अन्यों की सहायता किस प्रकार की जाए, अतः उनकी समाज सेवा की लालसा प्रभावशाली नहीं होती। वे जीवन के चरम उद्देश्य श्रेय आचरणम को नहीं जानते, वे वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करना है। यदि समग्र समाज सेवी तथा मानवतावादी गतिविधियां जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने श्री भगवान को प्रसन्न करने की ओर निर्देशित हो तभी वे पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण के बिना कोई भी मानवतावादी कार्य व्यर्थ है। श्री कृष्ण को प्रत्येक गतिविधि का केंद्र बनाना होगा, अन्यथा ऐसी गतिविधि का कोई मूल्य नहीं है। ओम ज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानंजन शलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगेन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगेन ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभयश्चय कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे मेरे अपने किसी काम का नहीं है, यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा धन परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं दैन्य का कारण बनेंगे। अन्यथा वे सब दुख एवं दैन्य का कारण बनेंगे। अगर शरीर जो है परोपकार में नहीं लगता है तो दुख का कारण कैसे बनेगा? आओ, आम तौर पे शरीर के लिए क्या किया जाता है? जब जीवित हैं, जब अलाइव हैं, तब हमारा शरीर के प्रति क्या आकर्षण रहता है, क्या करते हैं हम उसके लिए? अभी हमें मृत्यु की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी हम जीवित हैं, तो हम शरीर के लिए क्या करते हैं, क्या आकर्षण रहता है हमारा? नंबर एक कि शरीर स्वस्थ रहे, ठीक ठाक चलता रहे, हमें किसी के आश्रित ना होना पड़े, किसी का हाथ पकड़ के बाथरूम ना जाना पड़े, किसी का हाथ पकड़ के टॉयलेट ना जाना पड़े, कोई हमको नहलाने के लिए ना ले जाए, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो अपने आप में स्वस्थ रहे। अगर शरीर में कुछ अस्वस्थता आती है तो हम लोग क्या करते हैं? अगर अस्वस्थ हो जाता है, औषधि लेते हैं। कितने लोग औषधि लेते हैं सीरियसली? सीरियसली हर प्रॉब्लम का इलाज अलग है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप पंखा चाहते हैं या ठंडक चाहते हैं? भूख लग रही है तो भोजन चाहते हैं, प्यास लग रही है तो पानी चाहते हैं। अब प्रॉब्लम है भूख लगने की और आप इलाज कर रहे हो कि ठंडी जगह जाके बैठ गए, तो क्या भूख मिट जाएगी? प्रॉब्लम समस्या क्या है? समस्या है कि मुझे ठंड लग रही है और मुझे उसके लिए उष्मा चाहिए और मैं जो है खाना खाने बैठ जाऊंगा तो खाना खाने से क्या मेरी ठंड खत्म हो जाएगी? मींस जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का एक उचित इलाज है। जब शरीर अस्वस्थ होता है तो उसकी स्वस्थता को कायम रखने के लिए भी उसका एक उचित इलाज है। पर हम लोग जो है कई बार उचित इलाज नहीं कर पाते, कभी थोड़ा ये कह लीजिएगा कि बुद्धि काम नहीं करती है या हमारा विश्वास कुछ पलट जाता है, डोल जाता है, हम लोग जो है जो करना चाहिए न करके अपने मनोधर्म से अपने विश्वास से चलते हैं। मुझे एक एपिसोड याद है बड़े अच्छे तरीके से कि मैं वृंदावन गया तो वहां मुझे एक अंग्रेज भक्त से मुलाकात हुई। तपती हुई गर्मी का मौसम था, हल्की हल्की बरसात का मौसम शुरू, जुलाई का महीना था, मतलब बरसात भी आने वाली थी पर गर्मी बहुत थी। तो जहां धोती बांधी जाती है इस जगह पे उनके जो है फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगस रिंगवर्म, क्लियर कट रिंगवर्म के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मेरे लिंक में थे, मुझसे कहने लगे डॉक्टर व्हाट डू यू थिंक द ट्रीटमेंट फॉर दिस। मैंने कहा जिसका ट्रीटमेंट है कि आप एंटी फंगल गोली खाओ नंबर एक, खुजली की गोली खाओ नंबर दो जिससे आपकी खुजली से फैले नहीं आगे, और नंबर तीन मलम लगाओ। यू नो आई डोंट वांट टू टेक मेडिसिन, आई थिंक दैट आई मस्ट गो एंड बेद इन यमुना, आई विल बी ऑल राइट। एज यू विश, नो प्रॉब्लम। डेढ़ महीने के बाद हमारा फिर वृंदावन जाना हुआ, उनकी सारी जगह गल गई थी, गली हुई थी, धोती नहीं बांध पाते थे। हर चीज का हर इलाज, हर स्वस्थ शरीर रखने के लिए हर अस्वस्थता का अलग इलाज है। अगर आपका मन अस्वस्थ है आपको आध्यात्मिक क्लेश है, और आप उस आध्यात्मिक क्लेश के लिए एंटीबायोटिक खाना चालू कर दोगे तो आध्यात्मिक क्लेश खत्म नहीं हो सकता। मानसिक क्लेश को ठीक करने के लिए अलग इलाज है और शारीरिक क्लेश को ठीक करने के लिए अलग इलाज है। अगर आप जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए निमोनिया की दवाई खाओगे तो जोड़ों का दर्द ठीक नहीं होने वाला है, और अगर निमोनिया के लिए जोड़ों के दर्द की दवाई खाओगे तो निमोनिया ठीक नहीं होने वाला है। तो सिमिलरली ये हम जो है हमें समझना है कि हमारे जब बहुत संसार के अंदर जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर के अंदर जब हमें स्वस्थ रखना है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। पर हम करते क्या है, अपनी मर्जी। जब हम एक भौतिक संसार जिसमें कि शरीर को स्वस्थ रखना हमारे लिए एसेंशियल है और हम इस बात को समझते हैं, हम उसको नहीं कर पाते तो आध्यात्मिक संसार की मरने के बाद हमारे शरीर का क्या होगा, कहां हम जाएंगे, शरीर का क्या प्रयोग किया जाए, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। क्या समझते हैं हम उसको, नहीं, मतलब ही नहीं हमें। यहां यही स्पष्ट किया गया है कि आपका शरीर जैसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते या गीदड़ खा जाएंगे, नहीं तो आप उसको दाह संस्कार कर दोगे, जला दोगे। परंतु आपको यह याद रखना चाहिए कि मेरा शरीर जो है वो किसका बना हुआ है, शरीर किसका बना हुआ है, शरीर के अंदर जो 24 अंग हैं या 23 अंग हैं वो क्या हैं? 5 स्थूल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 3 सूक्ष्म, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञान की इंद्रियां, कान, आंख, नाक, जिह्वा के बोलने की शक्ति और जीवा के रस लेने की शक्ति और त्वचा, 5 इनके विषय, शब्द, रूप, गंध, स्वाद और स्पर्श, 5 कर्म की इंद्रियां, दोनों पैरों को एक माना गया है, दोनों हाथों को एक माना गया है, जीवा में बोलने की शक्ति जो है उसको एक माना गया है, और मल त्यागने का स्थान और मूत्र त्यागने का स्थान, और उसके बाद प्रधान अर्थात प्रकृति के 3 गुण, अव्यक्त प्रकृति जिसे कहते हैं वो जो है इसका 24वां अंग है। पर ये 24 के 24 अंग जो हैं किसके द्वारा दिए गए, व्हाट इज द सोर्स, सोर्स है भगवान की प्रकृति, और प्रकृति कौन है, प्रकृति भी भगवान से ही प्रकट हुई है, प्रकृति भगवान द्वारा प्रदान की गई है, प्रकृति भी भगवान की शक्ति है। अब भगवान की शक्ति का ध्यान हम नहीं रखते हैं तो क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे कि नाराज हो जाएंगे? व्हाट विल यू फील? वो आपके हृदय में बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे द्वारा दी गई जो शक्ति है, जो मेरी शक्ति के द्वारा दिए गए जो ये अंग हैं, इनका ये व्यक्ति जो है ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा। तो इट इज अवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसका ध्यान रखें दोनों स्थितियों में, जब जीवित हैं तब भी और जब मर गए हैं उसके बाद भी हमें जो है प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें उसका ध्यान कैसे रखना। तो क्या हम उसको रखते हैं? कभी किसी ने सोचा है कि मरने के बाद मेरे शरीर का क्या होगा, मुझे इसका बेस्ट यूज कैसे हो सकता है? व्हाट इज द बेस्ट यूज? यहां स्पष्ट कहा, आगे मैं भागवतम से भी श्लोक पढ़ूंगा, इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा धन परोपकार में लगने चाहिए, परोपकार में लगने चाहिए। परोपकार मतलब जिससे दूसरों को लाभ होता हो, दूसरों को फायदा होता हो और दूसरे इसका लाभ उठा के अपने आप को कृष्ण भावनामृत में आगे प्रोग्रेस कर सकें। हमें ये लाभ देना है दूसरों को, अन्यथा वे सब दुख और दैन्य का कारण बनेंगे। अजी बात तो आपने ठीक कही कि भगवान की शक्ति है और इस भगवान की शक्ति का मुझे खास ख्याल रखना चाहिए, मुझे इसको स्वस्थ रखना चाहिए। उस स्वस्थ रखने के अंदर जो एसेंशियलिटी है स्वस्थ रखने के लिए, वो चाहिए कि जो नॉन एसेंशियल है वो भी स्वस्थ रखने में आता है। नॉन एसेंशियल मतलब जहां पे जिसकी आवश्यकता नहीं है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी यूज करते हैं। जैसे घंटों बैठ के शरीर को सजाना, करते हैं नहीं करते प्रभु जी? ब्यूटी पार्लर्स, माता जी लोग क्षमा करेंगी मुझे, मेंस ब्यूटी पार्लर हैं आजकल, है कि नहीं? मेंस सैलून्स, क्या वो एसेंशियल है? क्या भगवान की प्रकृति जिसने हमें ये सारे अंग दिए हैं, जो हमें शरीर दिया है, उनको सजाना, उनके ऊपर घंटों घंटे खराब करने, ये क्या भगवान की भक्ति में सहायक हो रहे हैं या इंद्र तृप्ति में सहायक हो रहे हैं? किस में सहायता दे रहे हैं? क्या ये भक्ति में सहायक हैं? करते हैं क्या भक्ति में सहायता? नहीं करते। ये हमें सहायता करते हैं इंद्र तृप्ति में, अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए, अपने संतोष के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए। ये जो सहायता हमें मिल रही है अपने लिए, क्या इस इंद्र तृप्ति के सहारे क्या हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं? क्या जो हमें आत्मसंतोष मिल रहा है, जो हमें अपना आनंद मिल रहा है, हम अपने आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं, उसका जो फल हमें प्राप्त होगा, उस फल को भोगने के लिए मुझे फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा? शरीर धारण किए बिना मेरे पास कोई गुजारा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने शरीर को भगवान के बताए हुए आदेश के अनुसार इस्तेमाल नहीं करता हूं और अपने मनोधर्म से, अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल करता हूं, तो उसका लॉस जो है मुझे ही सहना है और किसी को नहीं। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन क्लियर। आपने स्वेटर पहना, नया वूलन, प्योर वूल, प्योर वूल का मार्क लगा हुआ है, 15 दिन पहना, मैला हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको साबुन में धो लेते हैं। आप गए, पाउडर साबुन डाला, धो दिया, स्वेटर की ऊन आपस में जुड़ गई। दुकानदार पे चले गए, भाई ये कैसा स्वेटर दिया, एक ही बार तो पहना, 15 दिन के बाद धोया है, एक ही धोवन में स्वेटर खराब हो गया। किससे धोया था जी? वो पाउडर साबुन आता है ना, डिटर्जेंट, उससे धो दिया था। वो निकालता है इंस्ट्रक्शन पैम्फलेट, देखो यहां लिखा हुआ है, छोटा सा स्लिप लगा हुआ है अंदर की तरफ स्वेटर के, लिखा है ड्राई क्लीन ओनली। तो आपने ड्राई क्लीन क्यों नहीं कराया? मैंने तो पढ़ा ही नहीं। آپ کو شریر کو استعمال کرنا ہے ایز پر انسٹرکشنز گیون بائی دی لارڈ، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا. بھگوان نے منشیہ شریر دیا ہے تو منشیہ شریر کا پریوگ کرنے کی انسٹرکشنز بھی دی ہیں. کیا انسٹرکشنز دی ہیں؟ من منا بھو مد بھکتو مدیاجی مام نمسکرو سرو دھرما پرتیجو مام ایکم شرنم رجا. بھگوان انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ کو اپنے جیون کو اس طریقے سے چلانا ہے. دس از دی اونلی فارمیٹ، نو ادر فارمیٹ، دس از مائی فائنل انسٹرکشن. اور ہم کیسے چلا رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے. تو ہمیں جب اس لوک کا ہی نہیں پتا کہ ہمیں اپنا شریر کیسے چلانا ہے تو پرلوک کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا تو ہمیں گیان ہے ہی نہیں ہے، نہ ہم اس گیان کو پراپت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے مرنے کے بعد بھی شریر کو کیسے پریوگ کرنا ہے اس کا گیان ہونا چاہیے. یہاں جو ہے بہت ساری چرچائیں ہو رہی ہیں. بھاگوت سے الیکھ آ رہا ہے پرتیک جیو کا دھرم ہے کہ اپنے جیون دھن بدھی تتھا وانی کو انیوں کے ہت کے لیے شبھ کاریہ کرے. مینس آپ کو جو ہے یہ شلوک سمجھنا چاہیے کہ یہ شلوک کس پہ لاگو ہو رہا ہے. جہاں تک سوال جیووں کا ہے، پشو بھی تو جیو ہے، منشیہ بھی جیو ہے، پر یہ شلوک جو لاگو ہوتا ہے کہ اپنے جیون دھن بدھی وانی کو انیوں کے ہت کے لیے شبھ کاریہ کرے، یہ پشوؤں کے لیے لاگو ہے یا منشیوں کے لیے لاگو ہے؟ سب سے نمن یونی جسے کہتے ہیں وتھ منیمل کانشیسنیس، ہم آس پاس دیکھتے ہیں تو کون سی ہے؟ پیڑ ہے نا، پیڑ کی کوالٹی کیا ہے؟ واٹ از دی کوالٹی آف ٹریز؟ نہیں نہیں وہ نہیں بات، وہ ہمارے لیے انسٹرکشن ہے. پیڑ کی کوالٹی کیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آتا ہے. جب آپ اسے کاٹ کے پھینک دیتے ہو تب بھی آپ کو جلانے لکڑی میں ایندھن میں کام آتا ہے، مر جاتا ہے تب بھی کام آتا ہے، پروپکار کر رہا ہے نا. آپ جیوت تھا، آپ نے پھل توڑ لیے، پھول توڑ لیے، پتے توڑ لیے، ٹہنیاں توڑ لی، منجن کر لی، کندن داتن کر لی، دسیوں کام اس سے کر لیے آپ نے. جب پیڑ مر گیا ہے اب اس کے دوبارہ جو ہے پھلنے پھولنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے. تب بھی وہ اس کی جڑیں نکال لو گے تو جلانے کے کام میں آتی ہیں، تنا لو گے تو جلانے کے کام میں آتا ہے، پتیاں لو گے تو جلانے کے کام میں آتی ہیں، ٹہنیاں لو گے، شاخائیں لو گے تب بھی جلانے کے کام آتی ہیں. مطلب وہ مرنے کے بعد بھی آپ کے کام میں آتا ہے. تو یہاں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد کیا ہم دوسرے کے کام میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ یہ بیٹے تھاٹ. ایسا جو ہے ویدوں میں الکھت ہے کہ جس ویکتی کی مرنے کے بعد آپ کوئی انگ نکال لیتے ہو تو اگلا جنم ملتا ہے تو وہ انگ ڈیفیسٹ ہو جاتا. کرم کانڈ میں ہے کہیں نہ کہیں اس کا الکھ ہے. گائے کی کتھا آتی ہے کہ گائے کو جب پنرجیون دیا جا رہا تھا رشی گن جو ہے اس کی منتروچارن سے بوڑھی گائے کو جوان بنا رہے تھے تو اس کو کاٹ کاٹ کے اگنی میں ہوم کر رہے تھے اور اس میں ایک براہمنی نے دیکھا مجھے اس کو ماس کھانے کی اچھا ہوئی، اس نے گائے کی ٹانگ کو چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا، نیچے دبا لیا. تو جب نئی ٹانگ آئی تو ایک ٹانگ سے ڈیفیسٹ تھی، ایک ٹانگ چھوٹی تھی. جب ٹریس ہوا تو پتا لگا کہ ٹانگ جو ہے اس براہمنی نے اپنے پاس دبا لی تھی، اس کی کھانے کی اچھا بن گئی تھی. تو تب جو ہے اس کو شراپ ملا کہ یہ جو ٹانگ جو تم نے رکھی ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کھور ہے اور ایک ماس ہے. جو لوگ جہاں پہ یہ ماس کو دبا دیا گیا، ٹانگ کو دبا دیا گیا، وہاں سے پیاز کی اتپتی ہوئی، اور جہاں پہ کھور کو دبا دیا گیا وہاں سے لہسن کی اتپتی ہوئی. اور ساتھ میں جو ہے یہ کہا گیا کہ جو لوگ جو ہے ان دونوں چیزوں کا پریوگ کریں گے وہ ملچ ہوں گے، وہ ملش یونی پراپت کریں گے. تو کئی بار کوشچن آتا ہے کہ آنکھیں دان دیتے ہیں، دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ کہ اگلے جنم میں آنکھ ہی نہیں ہو، آنکھ ہی کے پردہ ہی نہ ہو ہمارا, ہم نے دان دے دیا تھا ہم نے تو مرنے کے بعد, مرنے کے بعد لیور دان دینا نہیں چاہیے, مرنے کے بعد ہارٹ دان دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, مرنے کے بعد کڈنی دان دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. دیر آر سو مینی کوئریز. اس شلوک کے سندرب میں آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا, یہی آدھی لیلا کے اندر دیا ہوا ہے 41 42 اور 43 جو تین شلوک ہیں ان کو جب پڑھیں گے تو آپ جانیں گے. تو بابا جی اسپشٹ لکھتے ہیں کہ درباگیہ بھائی سامان لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگلے جنم میں کیا ہوگا, پرنتو شکشک کہتے ہیں شریر سماپت ہو ہی سب, شریر سماپت ہوتے ہی سب کچھ سماپت ہو جاتا ہے. لوگ منمانے طور پر سبھی پرکار کے پاپ کرم کرتے ہیں, اس طرح مانو جیون کا استتو تتھا کتھت نیتاؤں کے شیکشک پرچار کے کارے سے نشٹ ہوتا جاتا ہے. واستوکتا یہ ہے یہ جیون اگلے جنم کی تیاری کے لیے ہے. اب جنم کی پریبھاشا کیا ہے؟ جنم ہے پرکٹ ہونا, ناؤ یو آر ویزیبل اگین. سول انویزیبل ہے. سول ویزیبل ہے کیا؟ کتنا سائز ہے؟ کلپنا کرو کہ بال کی نوک کا 10,000واں حصہ. اب اس سول کو جب ایک شریر ملا ہے تو پراکٹیہ ہو گیا ہے. یہی دوسرے ادھیائے میں لکھا ہے بھگوت گیتا, بڑا آشچر ہے پرکٹ ہوتے ہیں پرکٹ ہوتے ہیں, مدھیوستھا بھی رہتی. یہی سول جب بھگوان کے دھام میں جاتی ہے تو کیا وہ بال کے 10,000ویں نوک کے برابر حصے میں رہتی ہے یا وہاں بھی پرکٹ ہوتی ہے؟ پرکٹ ہے, بتک بن گئی, مور بن گئی, گاس بن گئی وغیرہ, کوئی نہ کوئی روپ اسے پراپت ہو گیا. مطلب سول کا جو ایک 10,000واں حصہ تھا اس میں نہ رہ کے وہاں پہ پراکٹ ہو گیا ہے. بٹ دیر از اے ویری گریٹ ہیوج ڈفرنس. ڈفرنس کیا ہے کہ اس بھوتک سنسار میں دویتواد ہے, ڈویلٹی مینس سول ہیز گاٹ اے باڈی, باڈی میڈ آف مٹیریل اینرجی. پر بھگوان کے دھام میں سول کو جو باڈی مل رہی ہے وہ مٹیریل انرجی کی نہیں ہے, وہ سول کی اٹ سیلف باڈی بن گئی ہے. سول ایکسپینڈ کرتی ہے کس فارم میں؟ جس فارم میں بھگوان اس کو اپنے سنگ رکھنا چاہتے ہیں. جب ہم لوگ دیوالی پہ دیکھتے ہیں ہاتھی ہے چینی کا بنا ہوا, اسی چینی کا بنا ہوا گھوڑا ہے, بچوں کے لیے لاتے ہیں نا پوجا ووجا کے لیے کھلونے لے کے آتے, مطلب چینی کو کوئی بھی شیپ دے دیتے ہیں تو اس کا کھلونا بن جاتا ہے. اسی طرح بھگوان اپنے دھام میں اپنے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے سول کو کوئی بھی شیپ دے دیتے ہیں. وہاں ادویت واد ہے, سنگولرزم ہے, پلورلزم نہیں ہے, ڈوالٹی نہیں ہے, پرکٹ وہاں بھی ہو رہی ہے. بٹ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم پنرجنم کی تیاری کر رہے ہیں اس بھوتک سنسار میں یا ہم تیاری کر رہے ہیں آدھیاتمک سنسار ارتھات بھگوان کے دھام کے لیے, اگر بھگوان کے دھام میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں جو بھوتک شریر ہے تو وہاں پراپت ہونا نہیں, تو وائی ناٹ دس بی یوز فار ادرس, کہ اس کو دوسروں کے استعمال میں نہ دیا جائے. کیوں نہ ہم اپنی آنکھیں دان کر دیں, کیوں نہ اپنا لیور دان کر دیں, کیوں نہ اپنی کڈنی, کیونکہ بھگوان کے دھام میں نہ یہ آنکھ جانے والی ہے, نہ کڈنی جانے والی ہے, نہ لیور جانے والا ہے, نہ ہی ہارٹ جانے والا ہے. وہاں کیول کس کو جانا ہے؟ سول کو. وہاں جو پراکٹ ہونا ہے اٹ از دی سول ایکسپینڈنگ ان دی ریکوائرڈ فارم. پر یہاں پر جو ہے جب بھوتک شریر میں ہم ہیں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو اگلا شریر دھارن کرنا تھا. بٹ اس کے اندر بھی اس کو سمجھنا یہ ہے کہ سارے کے سارے شریر کا ہم دان کر سکتے ہیں, اس کو پر اپکار میں لگانا آوشیک ہے, اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے. یہی بات چیتنیہ مہاپربھو کہتے ہیں. آپ آدھی لیلا پڑھیں گے تو وہاں پر جو ہے چیتنیہ مہاپربھو کا کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے, ہمیں پر اپکار میں مکھ کاریہ کیا کرنا ہے, وٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ہم نے کل چرچا کری تھی پرسوں سنڈے کو پرا دکھی دکھی, اسی طرح آج ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پر اپکار کے لیے کیا کرنا چاہیے, وٹ از دی بیسک ریکوائرمنٹ فار دیٹ, بیسک انسٹرکشنز کیا ہے. पर उपकार के लिए हमको सबसे पहले जो हमारा कार्य है वो है कि बद्ध जीव को आप इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का मार्ग बताएं, इससे बड़ा उपकार और कोई नहीं। यू हैव टू गाइड देम, यू हैव टू इंस्ट्रक्ट देम, यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू एक्सप्लेन देम। आपको उन्हें बार 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 समझाना पड़ेगा, एक बार नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। वो निशान डालना है उनके ऊपर, एक दो बार बताने से बात नहीं होने वाली है। वो विरले जीव हैं जिनको एक बार सुनते हैं तो बात समझ में आ जाती है, एंड दिस लाइफ इज चेंज्ड। नॉर्मली क्या है कि आपको बार बार उसको हैमर करना है, बार बार, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन यू हैव टू टेल पीपल, यस दिस इज द पाथ, यस दिस इज द पाथ, यस दिस इज द पाथ। समस्या कहां आती है? कल भी वही बात बता रहे थे, आज भी वही बात बता रहे हैं, जब भी बताते हैं वही बात बताते हैं। वहां तो मन ही नहीं करता सुनने के लिए, एक ही बात को बार बार कैसे सुन सकते हैं? एक ही बात को बार बार कैसे सुन सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, आपने एक बात एक बार सुनी तो क्या समझ में आ गई, क्या पल्ले पड़ गई, क्या आपने उसका पालन करना शुरू कर दिया? नहीं। मंजन रोज करते हैं, कभी थकते नहीं। पानी रोज पीते हैं, कभी थकते नहीं। चपाती रोज खाते हैं, कभी थकते नहीं। दाल रोज खाते हैं, कभी थकते नहीं। सब्जी रोज खाते हैं, कभी थकते नहीं। नहाते रोज हैं, कभी थकते नहीं। उसी माला पे उसी मंत्र का जब रोज करते हैं तो थकते नहीं। तो भगवान की उसी वाणी को रोज सुनने से थक क्यों जाते हैं, इसका जवाब लोगों के पास नहीं। नो आंसर टू दिस। कल भी यही बात बता रहे थे, आज भी यही बात बता रहे हैं, परसों भी यही बात बता रहे हैं। दिस मीन्स कि हम लोग जो है अपने जीवन के अंदर सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। सुनने के लिए मुझे नई बात चाहिए, सुनूंगा तो नई बात को सुनूंगा। आहा क्या बात है। अरे भाई कर तो वही काम रोज रहे हो, उसी मेट्रो में बैठ के, उसी बस में बैठ के रोज ऑफिस जाते हो, उसी बस में उन्हीं दोस्तों के साथ मिलते हुए मेट्रो से वापस आते हो, उसी ऑफिस में रोज वही काम करते हो, उसी कंप्यूटर में बैठ के, उसी जगह बैठ के, उसी फाइलों के ऊपर, उसी पेंसिल से कार्य हो रहा है, सेम थिंग यू आर रिपीटिंग टाइम एंड अगेन। जब सुनने की बात आती है, हाय हाय ये तो कल भी यही बोले, आज भी यही बोल रहा है, इन्हों और कुछ आंदा ही नहीं। नो, वी हैव टू कीप दिस थिंग क्रिस्टल क्लियर, इसको समझना है। तो यहां जो है चर्चा हो रही है कि दुख का कारण क्यों बनते हैं। दुख का कारण बनने के पीछे एक ही रीजन है, ओनली वन रीजन, कि हमने अपने शरीर से भी कामनाएं स्थापित करी हुई हैं। मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। किससे मिलेगा? अगर मैं सुंदर दिखूंगा तो ये मिलेगा। किससे कामना हो रही है? दिस डिजायर कि मेरे को, मेरी सुंदरता को लोग अप्रिशिएट करेंगे, मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगा। देखो शादी है, ब्यूटी पार्लर जाना जरूरी है, सब देखें बिल्कुल एन सज बज के तैयार हो के सुंदर। अरे भैया अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अब तुझे सुंदर लगना है भगवान के लिए कि सुंदर लगना है समाज के लिए, किसके लिए लगना है? नहीं नहीं, ब्यूटी पार्लर तो जाना जरूरी है। ये डिजायर किसके लिए है? अपने शरीर के प्रति है। और जो डिजायर है, जो कामना है, वो कामना अपने संतोष मिलता है, अपनी खुशी मिलती है, अपना आनंद मिलता है, तो उसके रिजल्ट को भोगने के लिए फिर से शरीर चाहिए। डिजायर भगवान के लिए नहीं हुई, पर उपकार करना है। तो पर उपकार के अंदर हमें जो है इस संसार में जीव प्राणियों को, जो मनुष्य हैं, उनको अंधकार के मार्ग से निकाल के उनको प्रकाश के मार्ग पे लेके आना। हमें उन्हें चार नियमों के बारे में बताना है कि मांसाहार क्या होता है, अवैध यौनाचार क्या होता है, द्यूत क्रीड़ा क्या होती है, मद्यपान क्या होता है, इसके क्या नुकसान है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं, इनको त्याग देते हैं, तो उसके क्या फायदे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू टेल देम टाइम एंड अगेन। हमें उन्हें बताना है कि भगवान की कथा सुनने का क्या फायदा होता है, भगवान के दर्शन करने का क्या फायदा होता है, मंदिर जाने का क्या फायदा होता है, भक्तों का संग करने का क्या फायदा होता है, ग्रंथ पढ़ने का क्या फायदा होता है। वी हैव टू टेल देम टाइम एंड अगेन, एक बार नहीं, बार बार एम्फेसाइज करना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं कि भारतवर्ष के लोगों का एक ही कार्य है कि लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, संदेश देना। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य एक ही है, दैट इज प्रीचिंग। इसीलिए कहा गया है कि प्रीचिंग इज दी एसेंस, प्रचार ही सार। जब आप अपने जीवन के अंदर प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है। अभी कल मैं नजफगढ़ में लेक्चर देने जा रहा हूं, तो वहां से रिक्वेस्ट आया है कि हमने वेन्यू चेंज किया है, पहले वेन्यू डिफरेंट था, हमारा कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, तो हमने नया वेन्यू लिया है, दैट इज अ टेम्पल, एक रूटीन ट्रेडिशनल टेम्पल है, तो उसमें आप देवताओं की कोई बात ना करिएगा, क्योंकि टेम्पल की अथॉरिटीज नाराज हो जाएंगी, फिर यहां कथा नहीं करने देंगे। मीन्स हमारा जो प्रचार है उसमें राइडर लगा दिया गया, कंडीशंस अप्लाई, ये नहीं बोलना कि फिर जगह छिन जाएगी, फिर प्रचार नहीं हो पाएगा। बट प्रचार करने के लिए हमें ये राइडर स्वीकार है, वी कांट बी फैनेटिक एट दैट मोमेंट, क्योंकि हमें इस वक्त प्रचार करने के लिए स्थान चाहिए। रात को 8 बजे से लेके या 7:30 बजे से लेके 10 बजे तक पेड़ के नीचे बैठ के तो कर नहीं सकते, पेड़ ही नहीं है, उसके ऊपर चबूतरा नहीं है, सामने जगह नहीं है। आनंद लिया, मैं अभी 9 दिन बिहार में था, मैंने पेड़ के नीचे बैठ के लेक्चर दिए, वहां पर आम के पेड़ थे, घनी छाया थी, पेड़ों से आम की खुशबू टपक रही थी, हम बैठे हैं ऐसे 50, 60, 70, 100 लोग बैठे हुए हैं बिना माइक के, देयर वाज नो माइक, आवाज निकाल के पास पास बुला के पेड़ के नीचे बैठ के हमने उनको प्रचार किया, एंड पीपल एंजॉयड। पर यहां पर हमको जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइडर लग गया है, हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा, किसके लिए, परोपकार के लिए, क्योंकि उस परोपकार के केंद्र में कृष्ण है। कोई भी आप कार्य करेंगे परोपकार का, तो उसके केंद्र में कृष्ण होने चाहिए। आपने कहा ऐसा है जी, मेरा मन कर रहा है मेरी दुकान के आगे लंगर लगाऊंगा, चल भाई पूरी आलू बना दे, हलवाई की बुक किया, आटा मंगाया, आलू मंगाए, सब्जी मंगाई, आलू, अरे भाई पहले भगवान को खिलाया कि नहीं खिलाया, वो कैसे खिलाते हैं, हमने तो बनाया, पहले हलवाई ने चख लिया नमक मिर्च ठीक थी कि नहीं थी, उसके बाद हमने बांट दिया। इतना भारी परोपकार का कार्य कर रहे हो, भूखों को खाना खिला रहे हो, बट उसके केंद्र में कृष्ण नहीं, इट्स यूजलेस। जब तक आप परोपकार का कोई भी कार्य करेंगे, उसके केंद्र में भगवान नहीं होंगे, केंद्र में कृष्ण नहीं होंगे, परोपकार का कार्य बेकार हो जाएगा। ऐसे डिबोटी हमको ये समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य जो है भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम जाना है, और उस धाम जाने के लिए हमको वो कार्य करने हैं जो भगवान ने हम इंस्ट्रक्शंस दिए। तो यहां ये बात कही जा रही है, दधीचि मुनि कह रहे हैं कि मैं जो है अपने शरीर को दान देने के लिए अब तैयार हूं, क्योंकि इसके परोपकार का कार्य हो रहा है। परोपकार कैसा हो रहा है, इस ये हड्डियों को लेने के बाद क्या होने वाला है, दुष्टों का विनाश। परोपकार क्या है, दुष्टों का विनाश। बट इस भौतिक संसार में रहते हुए अगर हमारा शरीर मृत्यु के बाद किसी के काम आ सकता है, तो समाप्त हो जाने वाला है, क्योंकि उस शरीर के साथ किसी ने मंत्र होम करके उसको नया प्रदान करने की कोशिश नहीं करी है, जैसे गाय के लिए की थी। तो मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा है कि पुराने शरीर को काट काट के अग्नि में होम किया जा रहा है और नया बच्चा बनकर निकलेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। इट इज अ नेचुरल ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी और गोइंग बैक टू गॉड। इट उस कंडीशन के अंदर अगर हमें अपने शरीर को किसी को दान भी देना पड़ता है तो वी शुड डू इट वेरी हैप्पीली, बट कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। कृष्ण के प्रति दान लिखें, दान दें, उसके बाद उसको किसी के भी यूज आए, कुत्ता खा जाए या किसी की आंख में लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली तो आपने आंख को फूक ही दिया है ना, आंख थोड़ा साथ जा रही है। हमेशा याद रखिएगा भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंदर 8वें से लेकर 12वें श्लोक के अंदर ये चर्चा है क्लियर कट कि जब ट्रांस माइग्रेशन होता है सोल का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो कौन सी चीजें साथ जाती हैं। सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार और आपके कर्मों के फल, ये सब साथ में जाते हैं और ये जाके जो है फिर दोबारा से नया शरीर धारण होता है। मन के चारों तरफ इंद्रियां जो है संपुष्टित हो जाती है और उसके बाद आपको नया शरीर की प्राप्ति होती है। उसके अंदर आपकी आंख, नाक, कान, गला, ये जो है सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं, स्थूल रूप में नहीं जा रहे हैं। दे गोइंग इन सटल फॉर्म, स्थूल नहीं जा रहे हैं, इसलिए उसके बारे में चिंता क्यों करनी। कृष्ण को अर्पित करके हम उसको जो है फर्दर आगे किसी को भी दान में दे सकते हैं। यत करोषि यसनासि यज्जु होषि ददासि यत ये तपस्यासी कौन थे तद्गु दुर्श्वा मदर्पणम। हम उसको अर्पण कर सकते हैं पहले भगवान को और उसके बाद दान के स्वरूप किसी दूसरे को दे सकते हैं, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना है, आप शास्त्र पढ़िए, शास्त्र में जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उसके अनुसार चलिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हरे कृष्णा। मैंने उसके लिए बताया क्लियरली कि वो जो बॉडी पार्ट नहीं मिला जो मैंने गाय का एग्जाम्पल दिया है उसमें ऋषिगण बैठ के जो है मंत्रोच्चारण के द्वारा पुरानी बूढ़ी गाय को हवन में यज्ञ में अर्पित करके भगवान के प्रति अर्पित करके और वेदों के मंत्रों के उच्चारण करने के बाद जो प्रोसेस एंड सिस्टम दिया हुआ है उसके अनुसार चल के उसको नया जवान शरीर प्राप्त कर रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग एट ऑल। पर हम लोग तो करते नहीं है, डेथ हुआ जाके चार आदमी उठा के गए, जाके फूक के आ गए, तो मंत्रोच्चारण तो हुआ नहीं, सिस्टम जिंदा को तो नहीं काटा गया ना, जिंदा को तो मंत्रोच्चारण के नया शरीर नहीं दिया गया। हाँ तब बिल्कुल एज इट इज मिलेगा, पर कहां सुविधा है, कौन करता है, अलाउड ही नहीं है। और ऐसा पहले भी अलाउड नहीं था कि आप एक भगवान कह रहे हैं कि तेरे को मेरे धाम आना है, तेरे को शरीर थोड़ा प्राप्त करना है कि तू मंत्रोच्चारण से शरीर प्राप्त कर। पशुओं के लिए उन्होंने ये किया, पशुओं में क्या है, गायों के लिए किया, मुर्गों को तो नहीं काट काट कर नया शरीर प्राप्त करा रहे, मछली को तो नहीं काट कर नया शरीर प्राप्त करा रहे। इट वॉज ओनली अवेलेबल, दिस सिस्टम वॉज ओनली अवेलेबल फॉर काउस, नॉट फॉर अदर्स। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं शास्त्र की जो हमें स्वीकार करनी है, उन्हें एक्सेप्ट करना है, उन पर फेथ रखना। पर ये तो मैं कह रहा हूं, यू कैन गिव योर कॉर्निया, तो आप मंत्रोच्चारण से नहीं प्राप्त कर रहे ना, समझिए बात, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यही तो कंफ्यूजन है, यही तो बात यहां कही जा, परोपकार में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं शरीर को दूसरे के परोपकार में लगा देना चाहिए, भगवान की इंस्ट्रक्शन है, हम थोड़ा कह रहे हैं। हु इज गिवन दिस इंस्ट्रक्शन, भगवान दे रहे हैं ना। यही तो कह रहे हैं भारत भूमि है मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि परोपकार करना है, परोपकार करना है मुझे एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। पर वो जो परोपकार कर रहा हूं, परोपकार के अंदर मेरे को ये बात याद रखनी है कि मेरा जो शरीर जो मुझे प्राप्त है वो साथ नहीं जा रहा अगला शरीर प्राप्त करने के लिए। एज सच द होल आई इज नॉट गोइंग कि उससे मुझे अगली आई मिलेगी, एज सच द लिप इज नॉट गोइंग उससे मुझे अगला लिप मिलेगा। दैट आई गेट ऑटोमेटिकली बिकॉज ब्रह्मा जी ने मेरे शरीर की रचना करनी है, मुझे अरेंजमेंट करके देना, कैसा भी देंगे वो। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड अगर हमने उसको दान दिया है भगवान को समर्पित करने के बाद, तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है, एक हमारा प्लस पॉइंट और जुड़ जाता है कि हमने भगवान को दान दिया पहले, और दान देने के बाद हमने किसी दूसरे के नाम लिख दिया। आपको दान दिया लड्डू, आप खाओ या बाहर नाली में फेंको, चॉइस किसकी, आपकी है। भगवान को समर्पित हो गया, हमने उसके बाद दे दिया, उन्होंने किसी में लगा दिया, उसको यूज कर रहा। ये नहीं कि अगला जीवन हमें लिवर के बिना मिलेगा, लिवर के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। अगला जीवन हार्ट के बिना मिलेगा, हार्ट के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। तो अगर हमें ब्रह्मा जी ने बॉडी प्रदान करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, तो हार्ट भी देंगे, लिवर भी देंगे, किडनी भी देंगे, सब कुछ देंगे, इसके बिना तो संभव है ही नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि श्लोक के अंदर जो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको समझना है कि प्रत्येक जीव का धर्म है अपने जीवन धन बुद्धि तथा वाणी से अन्यों के हित के लिए शुभ कार्य करे, बट कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, उनके बिना नहीं। वो जो मैंने गाय का एग्जाम्पल दिया है, विधि पूर्वक शास्त्रों अनुसार उसका होम किया जा रहा है। हम अपना शरीर का होम विधि पूर्वक शास्त्रों अनुसार करने की हमें परमिशन नहीं है, बिकॉज मनुष्य शरीर बड़ा रेयर है, उसके लिए ऐसी परमिशन नहीं ग्रांट करी हुई है, नॉट पॉसिबल, नॉट नॉट बीइंग ग्रांटेड। पर हमारा शरीर जो है, उसको कुत्ते गीदड़ खा जाएंगे या जला दिए जाएंगे, उससे अच्छा किसी काम आ जाएगा, तो व्हाट इज द हार्म। उसको अल्टीमेटली तो जला देना है ना जाके, और तो कुछ करना नहीं है। साथ जाने हैं क्या, सूक्ष्म शरीर जाना है, कर्मों के फल जाने हैं, और सूक्ष्म इंद्रियां जानी है, जैसे ही नहीं जाने वाली स्थूल इंद्रिय नहीं जाने वाली, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। यही भागवतम का श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है समझाने के लिए कि परोपकार कैसे करना, अपने शरीर को भी परोपकार में कैसे लगाना। ये श्लोक
जब आप हम लोग परोपकार में नहीं लगा तो दुख का कारण कैसे।
देखिए, परोपकार में नहीं लगा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपको जो है जैसे उसका रिजल्ट होगा वैसे मिलेगा। वो तो भगवान के हाथ में है ना, आपको क्या देने वाले क्या नहीं देने वाले। दाह संस्कार हो गया, बात खत्म होगी, अगला शरीर प्राप्त हो गया। अगर आपने ऐसे कर्म किए हैं, भगवे पहन लिए हैं, कथा में उलझे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप दूसरा शरीर प्राप्ति नहीं करोगे, टनाटन सीधा गोलोक वृंदावन जा रहे हो आप, आपको शरीर की चिंता ही नहीं है। शरीर फिर भी प्राप्त हो रहा है, कैसा, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक शरीर मिल रहा है। ये चमड़ी मांस का बना हुआ नहीं मिल रहा, इंद्रियों का बना हुआ नहीं मिल रहा है। वहां पे आपके इंद्रियां हैं, वह दिव्य हैं, वहां पे बतख है तो अंधी थोड़ा है, मोर है तो पंख फड़फड़ा रहा है ना, टांगे हैं कि नहीं है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, कू कू कर रहा है नहीं कर रहा, सब कुछ हो रहा है। बट हर चीज ट्रांसेंडेंटल है, मटीरियल नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा कि इस संसार में है। इट इज डेफिनेटली different from here। हाँ जी,
एक और प्रश्न, आपने सूक्ष्म इंद्रियों की
तो स्पिरिचुअल देखो ऐसा होता है कि इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते, अचिंत्य हैं कि सूक्ष्म इंद्री कैसी है, नहीं जानते आप, समझे नहीं। बट शास्त्र कहता है कि जो इंद्रियां होती हैं उसका जो सूक्ष्मतम अंश है वो जाता है। अब वो कौन सा सूक्ष्मतम अंश है वो हमें नहीं पता, वी हैव नॉट नो। तो वो भेद आ गया है कि हम उस आंख से क्या एनालाइज कर रहे हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है नहीं। जब हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, चरितामृत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो पढ़ना हमारा जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है। जब हम मैगजीन पढ़ते हैं, दूसरी किताबें पढ़ते हैं, तो हमारा जो पढ़ना है वो भौतिक हो जाता है। पढ़ना तो पढ़ना ही है ना, आज तो पढ़ने का काम कर रही है ना, पर एक आध्यात्मिक हो गया पढ़ना और एक भौतिक हो गया पढ़ना, ये फर्क हो गया दोनों में। आज तो रीडिंग कर रही है ना, जो आंख के अंदर एनालिसिस हो रही है, क्या एनालाइज हो रहा है, माइंड में क्या जा रहा है, इस पर डिपेंड करता दृश्य जो है। तो त्रिपुटी कहते हैं, तीन चीजें कहते हैं इसके अंदर, एक विषय वस्तु जो सामने देखी जा रही है दृश्य, दूसरा दृश्य को देखने वाला, और तीसरा दृश्य को एनालाइज करने वाला। तुम्हारे पीलेपन में और इनके पीलेपन में फर्क है, तुम्हारा येलोइश डार्क लेमन है, इनका ऑरेंज है। कहने को दोनों कहेंगे भगवे कपड़े पहने हुए हैं, दृश्य में देखने में दोनों कुर्ते हैं, देखने में दोनों रंगीन हैं, कैमरे ने देख के पीछे मैसेज भेजा, आंख ने इस्तेमाल किया, अब दिमाग एनालाइज कर रहा है कि इनका जो कलर है वो डार्क येलो, इनका जो कलर है डार्क ऑरेंज। तो तीन चीजें इन्वॉल्व हुई ना। इसी तरह हम जब देखते हैं जो इंद्रियां हैं उसमें भी स्पिरिचुअल कैसी है तो काम तो वही कर रही है, आंख तो वही है भाई, इसको स्पिरिचुअल कैसे कहते हो? क्योंकि अब आपकी आंख वो देख पा रही है जो भौतिक आंख नहीं देख पा रही थी। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। एक अनपढ़ आदमी आया, एक काली काली लाइनें दिखाई दे रही हैं। क्या है? काली काली लाइनें दिखाई दे रही। थोड़ा पढ़ा लिखा है, हाँ ये हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ लिखा है, ये शब्द है कुछ, पर पढ़ा नहीं जा रहा क्या लिखा है। तीसरा व्यक्ति आया, हाँ इसमें लिखा है हिंदी में, यह है शरीर कौमा जिसे मृत्यु के पश्चात वगैरह वगैरह वगैरह। एक चौथा आया, कहता है हाँ शरीर की बात हो रही है, कुछ इसमें कुत्ते गिदड़ों की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, कुटुंबी की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है, दैन्य की बात हो रही है, कुछ बातें हो रही हैं। पांचवा आदमी आया, अरे तो बहुत बढ़िया चीज लिखी है, हैं कमाल, उस सब बात समझ में आ गई, है तो वही चीज, डिफरेंस क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि। पहले वाले के पास पढ़ने की बुद्धि नहीं है तो उसको काली लाइनें दिखाई दे रही, और पांचवे के पास उसमें जो पढ़ा है उसको अंडरस्टैंड करने की बुद्धि है, और छठा वाला जो है अंडरस्टैंड करके उसमें एक्सप्लेन करने की बुद्धि है। तो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस अलग हो गया ना, डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से हम जब सुनते हैं पढ़ते हैं, सुनते हैं पढ़ते हैं, सुनते हैं पढ़ते हैं, तो हमको जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारी चेंज होती जाती है। यहां बैठेंगे कॉन्शियसनेस डिफरेंट है, कथा खत्म हो जाएगी बाहर निकल के कॉन्शियसनेस पलट जाएगी, उससे बाहर जाएंगे तो कॉन्शियसनेस और चेंज हो जाएगी, मॉल के आगे से निकलेंगे तो कॉन्शियसनेस और चेंज हो जाएगी। आप तो वही हो ना, हर पल कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, बिकॉज माहौल परिस्थितियां स्थान हर चीज का इफेक्ट आप पे आ रहा है। यहां बैठे हैं तो आप नहीं पूछ रहे, अच्छा भाई तेरा कल झगड़ा हुआ था क्या हुआ, तो वहां गया था क्या हुआ है, तेरे उससे क्या बात हुई, बाहर निकलती बात होगी, उससे बाहर निकलती और डेप्थ में बात होगी, उससे बाहर निकलती आप उसे तरीका बताने लगो कैसे लड़ना जाके उससे, कल उससे ये बात कह दियो, कल ऐसा कर दियो। कॉन्शियसनेस टाइम एंड चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, कॉन्शियसनेस चेंज होती है। तो ये बातें समझनी है कि हम जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, भगवान के भक्तों के सानिध्य में रहते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस हर समय अंडर कंट्रोल रहती है, अंडर कंट्रोल रहती है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो पाती। जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हरे कृष्ण। क्लास खत्म करने दो, बाद में पूछ लेना, लेट देम गो, आई एम हियर। हार्ट जब ट्रांसप्लांट होता है तब सोल कहां जाती है बताओ जी?